हरे कृष्णा। आज की प्रातःकालीन इस सत्संग में आप लोगों की सभी हार्दिक स्वागतम है। तो आज रामानंद राय जी की तिरुभाव तिथि है और ये चैतन्य महाप्रभु के 3.5 पार्षदों में से दूसरा नंबर में हैं। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 3.5 पार्षद बोलते थे। एक लेडीज थी उनके आधा, पता नहीं इसकी अर्थ मुझे, लेकिन एक लेडीज थी उनके आधा। स्वरूप दामोदर जी पहले नंबर में हैं, द्वितीय नंबर में रामानंद राय जी है और तीसरा में शिकी माहिती और आधा में उनकी बहन। 3.5 पार्षदों में से जो दूसरे नंबर में है रामानंद राय जी, इनकी लीला गुण की तो बाखन करना साधारण जीव के लिए असंभव है। तो इसमें आप लोग जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथपुरी और ब्रह्मगिरी अलारनाथ इसके बीच में बेंटोपुर है। इधर से रामानंद राय के पिताजी उनकी वंश परंपरा से रहते थे और उनके पिताजी के नाम थे भवानंद पाटनायक। भवानंद के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में से रामानंद सर्वश्रेष्ठ हैं, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और बाणीनाथ। रामानंद राय, गोपीनाथ पाटनायक, कलानिधि, सुधानिधि और बाणीनाथ, ये 5 भाई थे। लगभग इस 5ों भाई उड़ीसा के प्रतापी राजा प्रताप रुद्र महाराज के अंतर्गत उनके राज्यों में बड़े बड़े पोस्ट संभालते थे। जैसे दक्षिण क्षेत्र के राजा तो लगभग रामानंद राय जी थे और दूसरे जगह गोपीनाथ जी भी बड़े पोस्ट में थे, तो ये राजा की सेवा करते थे, नौकरी करते थे इधर। तो ये 5ों भाई बड़े भक्तों अनुकूल थे। तो उनके पिताजी भवानंद राय जी महाप्रभु के ये 4 पुत्रों को मिलाए और सब कुछ महाप्रभु से समर्पित किया कि ये मैं मेरे 5 पुत्र सभी के साथ आपके समर्पित कर देता हूँ, आप हम सभी को स्वीकार कीजिए। और विशेष करके रामानंद राय और गोपी या और बाणीनाथ बिल्कुल महाप्रभु के सेवा के लिए, शारीरिक सेवा आदि करना, प्रसाद लाना, ये कार्य के लिए बाणीनाथ जी नियुक्त थे। और ज्ञान चर्चा के लिए रामानंद राय जी है। तो दोनों ही व्यक्ति, एक स्वरूप दामोदर रामानंद राय जी, दोनों ही महाप्रभु बड़े घनिष्ठ है। महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप, तृतीय स्वरूप। महाप्रभु बोलते हैं स्वरूप दामोदर जी मेरा द्वितीय स्वरूप है और तृतीय स्वरूप जो है रामानंद राय जी है। बड़े रसिक, पृथ्वी में ऐसे कोई रसिक भक्त नहीं है। तो ऐसे एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके जब जगन्नाथपुरी गए, कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रहे, फिर महाप्रभु इच्छा हुई दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए। तो जाते ही समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में निवेदन किया कि प्रभु आप दक्षिण में जाएंगे तो अवश्य ही आप रामानंद राय से मिलिए, मिलने से आपको पता लगेगा कैसे है पृथ्वी में ऐसे कोई रसिक भक्त और दूसरा कोई नहीं, एक नंबर में है सारा पृथ्वी में, ऐसे कोई रसिक भक्त नहीं, पंडित तो और भक्तिराज दोनों की सीमा तक पहुंच चुके हैं, चरम विद्वान है और पंडित तो भी है। तो इसके उपाधि के साथ उनके बताए कि आप जब तक उनके साथ संभाषण नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा, तो मेरी आज्ञा से आप अवश्य उनसे मिलिए। और ऐसे है प्रभु एक बात कि वो विषयी है और शूद्र है, ऐसे इसलिए आप उनसे दूर मत रहिए, अवश्य आप मिलिए। एक तो राजा जो व्यक्ति सन्यासी होते हैं वो राजा से बड़े आदमी से हमेशा दूर रहते हैं, और तो दोनों ओर से मिलना असंभव है, लेकिन आप मेरी आज्ञा से आप अवश्य आप मिलिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है आपके चरण कमल में। भगवान की खासियतें हैं, यदि भक्तों कोई निवेदन कर दिया उस बात को प्रभु नहीं टाल सकते हैं, यही प्रभु के नियम हैं। तो प्रभु ऐसे चलते चलते पूर्व क्षेत्र के बाद में बताते हैं कि सिंहाचलम विशाखापट्टनम के पास में, सिंहाचलम में नरसिंह भगवान की दर्शन किए, आगे गए गोदावरी, गोदावरी दर्शन करते ही महाप्रभु की यमुना जी के स्मरण हो गया, तीर में वन देखा तो वृंदावन की स्मृति हुई, महाप्रभु जी वन में नित्य गीत किए, गोदावरी पार कर दूसरी ओर जाकर महाप्रभु जी स्नान किए, स्नान करके सुबह सुबह एक वृक्ष के नीचे बैठे महाप्रभु नाम के स्मरण कर रहे थे, जप कर रहे थे। इसी समय रामानंद राय वाद्य यंत्र के साथ बड़े भव्यता के साथ वेदों की स्तुति ऋचाओं को उच्चारण करते हुए आगे पीछे एक पालकी में बैठ के रामानंद राय स्नान के लिए आए, बिल्कुल विधिवत वेदों को ऋचाओं को उच्चारण करते करते और मंत्र वैदिक मंत्र पढ़ते हुए वाद्य यंत्रों के साथ बड़े ठाठ बाट से आए, स्नान किए, स्नान करके तर्पण आदि किया। महापुरुष बैठे बैठे देखे और समझ गया कि यही रामानंद राय होगा। महापुरुष के मन हुई कि मैं जाके मिलूं, लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं मुझे क्योंकि एक तो सन्यासी है, भगवान तो है ही है सन्यासी भी है, सन्यासी को जाकर एक विषयी के पास में मिलना ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए महाप्रभु मन में तो इच्छा हुई उनसे मिलने के लिए, लेकिन उठा नहीं, बैठे रहे। तो मिलने का कुछ ये किए महाप्रभु जी, अपने शरीर से ऐसे लग रहा था कि सौ सौ सूर्य जैसे तेज निकल रहे हैं महाप्रभु से, और ऐसे भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। दूर से जब देखा चमकती है कि सन्यासी बैठे हुए हैं, रामानंद राय धावित होकर जैसे आकर्षित होते हुए आ गए, आकर इस महाप्रभु दिव्य कांतियों का दर्शन करके मोहित हो गया और साष्टांग दंडवत किए। महाप्रभु भी खड़े हो गए और बोला उठो उठो। तभी महाप्रभु की मन में इच्छा हुई कि मैं उसका आलिंगन करूं, लेकिन फिर भी मन ही मन विचार किए कि पूछ लेना चाहिए कि कौन है, रामानंद राय है या नहीं। तो बाद में होता है आप रामानंद राय हो, बोला है मैं शुद्ध राधम हूँ। तभी महाप्रभु और रामानंद दोनों अपने छाती में भुजा में भर लिए, दोनों गदगद हो गए, मूर्छित हो गए, प्रेमिक भक्तों और प्रेमिक भगवान दोनों की जखन जब ही मिलान हुआ दोनों ऐसे ही हो गए, दोनों साइड में मूर्छित होकर गिर पड़े, और अष्टसात्विक जो विकारे हैं सभी दोनों के शरीर में अष्टसात्विक विकार होने लगे, गदगद हो गया गला, गदगद शर से कृष्ण कृष्ण कहने लगे। लेकिन जो साथ में जो ब्राह्मण थे इन लोग जब देखा बोले ये क्या है, ये सन्यासी तो देखने में लगता है कि साक्षात भगवान है, परम ब्रह्म है साक्षात ब्रह्म है, ये शूद्रों का आलिंगन क्यों रो रहे हैं, रो क्यों रहा है, और हमारा जो महाराज है पंडित है गंभीर है, पंडित है तो जानते हैं, भावुकता नहीं होती उसमें, गंभीर होते हैं। तो ये भी कैसे हो गया ये दोनों दोनों की। लेकिन महाप्रभु जी ऐसे बार बार ऐसे हो जाते थे, कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाता था महाप्रभु, क्योंकि बाहरी लोगों को भाव दिखाने नहीं चाहते थे। लेकिन अभी यहाँ छुपा नहीं पाए, दोनों भक्त और भगवान मिलन हुआ। तो इस बहिर्मुख लोगों को देखकर, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उन लोगों को दर्द देखकर इस भाव को नहीं समझ पाया, तो अपने महाप्रभु अपने भाव का संवरण करके दोनों एक स्थान में छाया में बैठे। बैठने के बाद प्रभु बोला कि बहुत अच्छा हो गया कि आपसे मेरा मिलन हो गया अनायास में, क्योंकि एक राजा के साथ मिलना इतना आसान नहीं होता है। टाइम लो, उनका मिलने का टाइम होते हैं, चौकीदार छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, तो राजा ही है, इसलिए बोला अनायास में मिलन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और रामानंद राय ने सोच लिया कि बोला देखो मैं तो मिलना नहीं चाहता था, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया, उनसे बातों से आपसे मिला। हाँ, रामानंद राय भी समझ गए, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, सार्वभौम के प्रति आपने कृपा कर दिए होंगे और उनकी बातों से आपने मिला, और वो ऐसे व्यक्ति है जो कि पीछे भी दूसरे का हित करते हैं। मान लीजिए मैं जगन्नाथपुरी में नहीं हूँ, लेकिन महाप्रभु जी आएंगे सिर्फ इसके लिए रिक्वेस्ट करके रखे थे कि प्रभु आप जब जाएंगे उनसे मिलिए, तो बोला परोक्ष मेरा पीछे से भी मेरा हित करते हैं, तो बोला उनके कृपा से आपका दर्शन मुझे मिला। मैं तो कहा विषयी हूँ, राजा हूँ, और मेरे लिए आपके दर्शन मिलना बहुत कठिन है, असंभव है, और आपके कृपा से मुझे दर्शन मिला। तुमार कृपाए तुमार कराय निंदा कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुमार मर्म। तो भगवान की कृपा ऐसे होती है, भगवान को निंदा कर्म कराते हैं। कृपा ऐसे बलवती होती है कि भगवान को निंदा होती है। जैसे आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया, भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा रक्षा किया, ये कृपा उनकी, यशोदेव यशोमती मैया के पास बंधन में आ गए। इधर राजा जो राजा से एक सन्यासी को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन ये मर्यादा क्या करेगा, प्रेम के पास मर्यादा के जो बंधन टूट टूट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए आपकी ये कृपा है, अहित की कृपा है, जो कि आपने मर्यादा के बंधन को तोड़कर अपने मुझे मिला है। तो महान तेरे स्वभाव ऐ तारिते पामोर, निजो कार्य नहीं तो वो जान तार घर। महंत के स्वभाव ही ऐसे होते हैं कि पामोर लोगों को धार के लिए उनकी कोई कार्य नहीं होते हैं, फिर भी उस दूसरे के घर जाते हैं। तो ऐसे ही आपने मैं तेदार विषय में भाषा हुआ था, आप घूमते घूमते आ गए, क्योंकि आप महंत है, आपका हृदय जो है द्रवीभूत है, दूसरे के हित के लिए आपका हृदय रोते हैं, तो ये महंत के स्वभाव है, इसलिए आपने आ गया। और बताते कि मेरे साथ सौ सौ ब्राह्मण है, तुम्हारे दर्शन के प्रभाव से सभी की आंखों में अश्रु आ गया, आंखों से अश्रु जल गिर रहे हैं, और मुख से गदगद कृष्ण कृष्ण शब्द बोल रहे हैं, और आकृति प्रकृति तुम्हार ईश्वर ईश्वर स्वरूप। तो आपकी आकृति या प्रकृति, आकृति क्या है उनके जो स्वरूप है वो आकृति, स्वभाव प्रकृति क्या है उनके स्वभाव जो है। तो एक तो आप महा आप स्वयं भगवान है, आपकी आकृति प्रकृति और आपके स्वभाव के द्वारा पता चलता है। तो ईश्वर जीव साधारण जीव में ऐसे कोई गुण नहीं है, जैसे आपने आप आपने आप कुछ बोला भी नहीं, प्रीचिंग भी नहीं किया, सभी रोने लगा। कोई कोई सालों से माला ले लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई बार लोई बाजार में जाके धागा बदल के लाया ना माला जपते जपते, पानी एक बूंद भी नहीं आता है। कोई प्रीचिंग नहीं किया, हरे कृष्ण बोलने के लिए नहीं बोला, लेकिन गदगद से वस्त्र गिरने लगा, रोमांचित हो गया, कंपित हो गया सभी लोग जो निंदा करने वाले थे। कुछ समय पहले बोला ये कैसे भाव है इनकी। तो इसके विचार सुनने से आगे कि आप साक्षात भगवान हैं। तो महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं, तुम महाभागवत उत्तम, तुम्हार दर्शन सवार द्रोहित मन, अन्यर की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमीयो तुम्हार दर्शने कृष्ण प्रेमे भाषी। बोला नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बात है आप महाभागवत है, आप महाभागवत उत्तम है, और इसके लिए सभी के आंखों में आंसू अश्रु आ गया और कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, गदगद गदगद हो गए सभी। ये आपके प्रभाव महाभागवत है। और दूसरी के बात क्या बताओ, तो मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूँ, हाँ दिन रात मायावाद मायावाद में मैं तैरते रहता हूँ, तो मैं भी द्रवीभूत हो गया आपके प्रभाव से। इसी प्रकार दोनों का गुण दोनों गाने लगे, भक्तों की भगवान, भगवान के गुण भक्तों, ऐसे दोनों का गुण गाने लगे। इसी समय एक ब्राह्मण आके निमंत्रण किया कि प्रभु आज मेरे घर में आप भिक्षा लेना है। महाप्रभु देख लिया, तीज में बताते हैं कि निमंत्रण मान लिया तारी वैष्णव जानिया, तो इस पे समय मिला तो प्रभुपाद जी कलम चलाया, बताया कि हमें हर जगह प्रसाद नहीं लेना चाहिए, हर जगह खाना हमें नहीं खाना चाहिए। निमंत्रण क्यों माना, वो व्यक्ति वैष्णव था, ब्राह्मण तो था ही था, उसके ऊपर वैष्णव भी थे, हम लोग कहीं पे खा लेते नहीं, ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी बोलता नहीं, ऐसे नहीं खा सकते, हमें वैष्णव जो दीक्षित है उनके घर पे जाके ही हमें प्रसाद लेना चाहिए, जो सोलह माला जप करते हैं, कम से कम भगवान को भोग लगाते हैं। तो इसी प्रकार निमंत्रण स्वीकार किए वैष्णव को देखकर, लेकिन दोनों का छोड़ने का मन नहीं हुआ। तो महाप्रभु जी बताया कि केवल दर्शन से नहीं होगा, दोबारा आपका दर्शन मुझे चाहिए और आपके मुख से मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तो यही उनके मुख से महापुरुष कृष्ण कथा सुनने चाहते थे, केवल दर्शक, क्योंकि राजा है ऐसे तो आसानी से मिल नहीं सकते उनसे, इसलिए आपका दोबारा आपका दर्शन चाहिए। बोला रामानंद राय ने बोला दर्शन दूरेर कथा, दर्शन दूर की बात है, पांचो सातो दिनों रही करहे मार्जन तबे शुद्ध है मोर एई दुष्ट मन। बोला दोबारा मिलने के बाद क्या है, पांच सात दिन रुकिए इधर और मुझे मेरे मन को मार्जन कीजिए। एक्चुअली मिलना बस साधुओं से मिल गया नहीं, उनके उपदेशों को श्रवण करना है, उसको पालन करना है। तो बोला इसलिए मुझे घिसिए, मेरे इस दुष्ट मन को मार्जन कीजिए, तब मेरा दुष्ट मन शुद्ध होगा। इसलिए चैतन्य महापुरुष बताया क्या, चेत दर्पण मार्जनम, चित्र भी दर्पण को मार्जन करना पड़ेगा, दुष्ट मन को मार्जन करना पड़ेगा, मलिन हो गया विषय की मल, अनंत काल से इसमें मल बैठा हुआ है, मैला बैठा हुआ है, बहुत रगड़ना पड़ेगा इसको। तो यही बता रहे कि पांच सात दिन रहेगा, पांच दिन या सात दिन रहकर मुझे मार्जन कीजिए, सत्संग रूपी की सत्संग रूपी भीम पाउडर और मार्जन, इसे मार्जन करना है, बार बार मारना है। साधु लोग यदि कोई, इसलिए साधु लोग ज़्यादा कड़क बात करते भी नहीं हैं, क्योंकि कड़क बात करने से दूसरा दिन कोई नहीं आने वाला। गौर कृष्णदास बाबा जी बोलते हैं कि यदि किसी को कोई थोड़ा गाली दे दो तो कमरा से बैग उठा के भागते हैं, भाग जाएंगे, दोबारा कभी दर्शन ही नहीं होगा। और बोलते हैं घर पे हर दिन गाली होते हैं, गाली मार पीट होते हैं, क्या कहानी होते, फिर भी हर दिन बना रहता है। मान लीजिए एक दिन के लिए बहुत नाराज होकर चला गया, शाम तक वापस आ ही जाता है। लेकिन बोलते साधु एक बार गाली दे दिया और दोबारा दर्शन मिलना बड़े मुश्किल हो जाता है, बैग उठा के भागता है बस। और बोलते हैं यही गाली है महा औषधि माया को तारने के लिए। एक शुद्ध भक्त की जो गाली है, जो डांट फटकार है, वो बहुत प्रेमी होते, क्यों डांटेंगे, हमें सुधारने के लिए हमारे पास प्रीति है तभी तो डांटते हैं। बोले यही महा औषधि, औषधि नहीं है, एक साधु की जो गाली है, जो डांट फटकार है, महा औषधि है इस भावो माया की दुनिया से माया को छुड़ाने के लिए। इसलिए मार्जन करना पड़ेगा मन को। ये ही सिद्धांत तो सिखाते हैं कि 5-7 दिन रह के मुझे मार्जन कीजिए अच्छा से। इसी प्रकार दोनों को छोड़ नहीं सकते, फिर भी सार्वभौम जी या रामानंद राय जी नमस्कार प्रणाम करके चल दिए और महाप्रभु जाके उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा लिए। दोनों की दोबारा मिलने की इतना उत्कंठा हुई, इतना उत्कंठा, कब शाम ढलेगा, कब दिन हो जाएगा, कब शाम आ जाएगा, रात होंगे, कब दोबारा मिलेंगे। प्रतीक्षा की घड़ी बहुत लंबे होते हैं, सबको पता होगा, स्टेशन में जो जाते हैं ना, एक ही समय पता लगता है कि लंबा टाइम कितना लंबा होते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं। इसी प्रकार दिन भर बैठे रहे। तो शाम को महापुरुष स्नान करते थे, 3 बार स्नान करते थे, गायत्री मंत्र जपने से पहले स्नान करते थे। तो 3 बार शाम को स्नान आदि करके, गायत्री मंत्र आदि जप करके महापुरुष बैठे थे। इसी समय रामानंद राय भी तैयार होके आ गए, एक सेवक के साथ आकर प्रणाम किए, महाप्रभु उनका आलिंगन किया, एकांत स्थान में दोनों बैठे, बैठकर प्रश्न किया, प्रभु कहे परो शोलोक साध्यर निर्णय, राय कहे सदर्माचरणे विष्णु भक्ति हय। बोलो बोलो साध्य के निर्णय, हमारा लक्ष्य साध्य मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस चीज को बताइए। बोला सधर्म आचरण करना है बस। सधर्म आचरण करने से विष्णु भक्ति होती है। प्रभु कहे यो बाई हो, आगे कहो आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण, यही साध्य सार। बोला ये बाहरी धर्म है, एकदम नहीं काटा। बोले ये बाहरी धर्म है, क्योंकि शारीरिक धर्म है, बाहरी धर्म है, तो आगे बताओ। और बोला कर्म करके कर्म फल भगवान में अर्पण करना। प्रभु कहे, प्रभु क्या बताया, बोले ये हो बाई हो, बोले ये भी बाई हो, आगे कहो आर, राय कहे सधर्म त्याग, यही साध्य सार। बोला ठीक है, कर्म भी नहीं कर, सारे धर्मों को त्याग करेंगे, सधर्म त्याग। प्रभु कहे ये हो बाई हो, महाप्रभु बताया कि ये भी बाह्य धर्म है, और आगे कुछ कहो। उन्होंने बताया ज्ञान मिश्र भक्ति, यही साध्य सार। उन्होंने ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताया, महाप्रभु इसको भी काट दिया। तो 4 बार सधर्म आचरण, भगवान कर्म भगवान में समर्पण, और धर्मों का त्याग करना, इसके बाद ज्ञान मिश्र भक्ति, 4 बार बोला ये बाह्य धर्म है। इसके बाद जब ज्ञान शून्य भक्ति बोला, बोला हाँ ठीक है, और आगे कुछ बोलो। प्रेमा भक्ति के बारे में बताया, दास्य भक्ति के बारे में बताया, बोला ठीक है और कुछ है। 3 बार महाप्रभु बोला है ठीक है। और चाह और इसके बाद बोला कि और ठीक है और आगे आगे कुछ है। तो उन्होंने बताया कि साक्ष प्रेम सर्वसाध्य सार, प्रभु कहे हे उत्तम आगे कहो। और तो बोला साक्ष प्रेम जो है ये सर्व प्रेम साध्य सार है। महाप्रभु जी ने बताया ये उत्तम है और आगे कुछ बताया। तो फिर रामानंद जी उन्होंने बताया कि साक्ष ये वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार, बोले यह उत्तम आगे कहो। आर तो बोले कांता प्रेम प्रेम साध्य सार। इस तीन जो रस है ये तीन रस के बारे में बताया कि साक्ष प्रेम बंधुत्व मित्रता भगवान से मित्रता स्थापित करना, वात्सल्य प्रेम जैसे नंद यशोदा भगवान को अपने बच्चे के रूप में, या वृद्ध जो गोपी है सभी वृष के सभी भगवान श्री कृष्ण बच्चे के रूप में देखते हैं, और कांता प्रेम राधा रानी आदि गोपी जो है, ये तीन को महाप्रभु बोले उत्तम है। तीन तीन प्रेम के बारे में उत्तम बताया। तो तीन बार चार बार बताया बाह्य है, तीन बार बताया ठीक है, और तीन बार बताया उत्तम है। उत्तम के उत्तम उत्तम के बारे में बताया। तो इसके बाद कृष्णदास कविराज बताते हैं पांच रस जो है एक एक में एक एक गुण है, विस्तार करने जाएंगे बहुत समय लेंगे। तो एक एक गुण है, इसी प्रकार जो पूर्ण रस है वो कांता प्रेम है, जो उसमें शांतियों का गुण भी है, दास्यों का गुण भी है, सेवा करते हैं। शांतों का क्या गुण है? निष्ठा है। शांतों का गुण क्या है? निष्ठा। कोई आपके किसी को सेवा करना है तो पहले तो निष्ठा तो होना चाहिए, तो निष्ठा से शुरू होते हैं। निष्ठा कृष्ण बिना तृष्णा त्याग, तो कोई भोगों की इच्छा नहीं रहती शांतों की, तो निष्ठा है। इसके बाद सेवा, सेवा दास्य सेवा है। तो उसके बाद साक्षों में बिना भेद व बिना संकोच की सेवा है भगवान से, और उनमें कोई संकोच नहीं है। और वात्सल्य में पालन है, यशोदा मैया लोग सोचती हैं कि मैं पालन करते पालन करने वाला हूँ, तो वो पालन करते हैं। और कांता रस में निज अंगों दिया करण, अपने अंगों को देकर सेवा करते हैं। तो ये परिपूर्ण रस कांता प्रेम है। तो इसी प्रकार बताने के बाद बताया कि देखो और आगे कुछ है क्या, आगे और कुछ बोलो। महारामानंद राय जी बताते प्रभु इसके आगे भी पूछने वाले कोई है, मुझे इतने दिन पता नहीं था कि इसके ऊपर भी कोई प्रश्न करेगा। इसके ऊपर मुझे इस दिन पता नहीं था कि इसके ऊपर कोई प्रश्न करने वाले हैं। बोले इसमें से राधा रानी की जो प्रेम है सर्व सर्व शिरोमणि है, तो कांता प्रेम से फिर राधा रानी की सभी कांता प्रेमी प्रेमियों से, जैसे द्वारिका में है और वैकंठ में लक्ष्मी है, और वृंदावन की जो गोपी है ब्रजगोपी है, इसके बाद में फिर राधा रानी। बोला राधा रानी की प्रेम जो है सबसे उच्च सर्वोच्च प्रेम है। तो बताए और आगे कुछ बोलो, तुम्हारा मुख से अमृत की धारा बह रहे हैं, और आगे कुछ बताओ। बताते देखिए प्रभु क्या मैं बताऊं, राधा रानी की प्रेम की उपमा देने का कोई नहीं है कि इसके बराबर ऐसे कोई प्रेम किया होगा जो जिसके मैं उपमा दे दूं कि राधा रानी की प्रेम इसके बराबर है, लक्ष्मी के बराबर है, सीता की बराबर है, जनक नंदिनी सीता की बराबर है, महालक्ष्मी के बराबर है, या सत्यभामा के बराबर है। कोई उपमा देने का कोई है ही नहीं, मतलब राधा रानी से सर्वश्रेष्ठ और कोई नहीं है। प्रेम प्रेम करने में सबसे ज़्यादा उच्चा प्रेमी है। तो बता वो उसको प्रमाण देते हुए बताते हैं कि 100 करोड़ गोपी के साथ कृष्ण रास विलास करते थे, 100 100 करोड़ गोपियों में से, उसमें से राधा रानी के मन में एक क्रोध आई कि देखो सभी गोपियों के पास एक कृष्ण है, मेरे पास एक कृष्ण है, तो मैं सभी गोपी के बराबर हो गई हूँ। इसलिए राधा रानी के मन में क्रोध आ गई, क्रोध होकर रास को त्याग करके चली गई। लेकिन रास की जो श्रृंखला है, राशेश्वरी है, राधा रानी है, राधा रानी बिना रास नहीं होती है। तुरंत भगवान 100 करोड़ गोपी, अनन्य सुंदरी ललिता विशाखा चंद्रावली राधा रानी की बहन है, बिल्कुल ललिता विशाखा भी राधा रानी की जैसी ही सुंदरी है, सबको त्याग कर भगवान चले गए और राधा रानी को मन मन में ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद मिला नहीं तो काम बाणों में खिन्न होकर सिर में हाथ देकर बैठा हुआ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, इहाते अनुमानी श्री राधिकार प्रेम, शत कोटि गोपीते नहे काम निर्वापन, तो 100 करोड़ गोपी मिलकर भगवान श्री कृष्ण के संतुष्ट नहीं कर पाया, तो 100 करोड़ गोपी की जो गुण है उससे भी ज्यादा गुणी है राधा रानी। तो 100 करोड़ गोपी मिलकर भगवान के संतुष्ट नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार बोला, अच्छा जिसलिए मैं आया हूं वो मुझे मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। और अपने अच्छे और आगे कुछ बताइए। भगवान के स्वरूप, राधा के स्वरूप, ये सभी कुछ बताइए। तो इसके बाद साधन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लंबे कथा कृष्ण के स्वरूप के बारे में, राधा रानी के स्वरूप के बारे में, प्रेम प्रेम के बारे में सभी कुछ बताते हैं। और इसके बाद महापुरुष जी बताए, साधने बिना साध्य वस्तु केहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। तो साधन के बिना साध्य वस्तु किसी को नहीं मिलता है, आप कृपा करके पाने का उपाय बताइए। आप तो साधन के बारे में बता दिया, साध्य के बारे में बता दिया कि कृष्ण प्रेम सभी साध्य है, लेकिन बता तो दिया, लेकिन मिलेगा कैसे ये बताते हैं। साधन बिना, बिना साधन में साध्य लक्ष्य वस्तु किसी को नहीं मिलता है। मिले ऐसी मिल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। यही बोलते हैं, साधन बिना साध्य वस्तु, लक्ष्य वस्तु जो है बिना साधन में किसी को नहीं, रोना पड़ता है, भटकना पड़ता है। हा हे राधे भज देवी के, हे ललिते नंद सुनो पुता, ऐसे बन मन में ढूंढते थे, रोते थे दिन रात 24 घंटा, हे राधे हे कृष्ण कहा बन मन में ढूंढते थे। ऐसे ढूंढने के बाद ही तो प्रभु मिलते हैं। तो ऐसे साधन नहीं है तो साध्य वस्तु नहीं मिलेगा। साध्य वस्तु क्या मिला, रहने का स्थान मिल गया, अच्छा प्रसाद मिल गया, वृंदावन धाम में रहो, इतना साध्य हो गया, मिल गया, बस दर्शन करो ठाकुर जी की, मंगलारती अटेंड करो। लेकिन प्रेम पाने के लिए रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। प्रभु कहा है, रात्रि दिनों पूरे अंगों स्वस्ति नहीं पाऊ, जहां गेले कानू पाऊ तहां उरी जाऊ। रात दिन मेरा मेरे मन जो है चलते रहते हैं, स्वास्थ्य नहीं है, बेचैन नहीं है, बेचैन हमेशा है। जहां जाने से कान्हा कृष्ण मिल जाए, पंख लगा के मैं भाग जाऊं, उड़के उड़ान भर के। प्रेमो धनो वीर्थम, प्रेमो धनो बिना व्यर्थम, दरिद्र जीवन दास कुरी वेतन मरे, दाओ प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ है, दरिद्र है जीवन, दरिद्र है। कितने भी बैंक में पैसा हो लेकिन व्यर्थ है, दरिद्र है। दास बनाओ और प्रेम धन की तनख्वाह मुझे दे दो। इसी प्रकार साधन बिना साध्य वस्तु किसी को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आत्महत्या करने से नहीं। पहिया सनातन गोस्वामी विचार किया था कि रथ के पहिया में हम आत्महत्या करेंगे, मिल जाएगा परम पुरुषार्थ। उन्होंने बोलता है कि ये परम पुरुषार्थ है। महाप्रभु ने भक्ति बिना कृष्ण कवि नहे प्रेम दय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्न हईते नय। तो भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति करने से भगवान चरण, भगवान श्री कृष्ण के चरण पर प्रेम की उदित होगा, प्रेम उदित होगा तभी कृष्ण मिलेगा। प्रेम से ही कृष्ण को आप पकड़ सकते हैं, बिना प्रेम में किसी के द्वारा आप नहीं पकड़ सकते, उनको पकड़ने के लिए प्रेम चाहिए, और भक्ति करने से प्रेम होती है। तो इसी प्रकार साधन बिना साध्य वस्तु पाना मुश्किल है। तो आप कृपा करके बताया, तो बोला मोर मुखे वक्ता तुम्हें हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुनो साधनेर कथा, त्रिभुवने मध्य ऐसे हय कोन धीर जे तुम्हार माया नाट्य होइबे स्थिर। बोलते हैं कि मोर मुख से वक्ता आप ही श्रोता, आप मेरे मुख से आप ही बोल रहे हो और आप ही श्रोता बन रहे हो, और अत्यंत रहस्य श्रवण करे साधन की कथा, और त्रिभुवन में ऐसी कौन धीर व्यक्ति है जो तुम्हारा मायानाट में स्थिर रहेगा, रह सकते हैं? उनके मायानाट में बलराम भी नहीं समझ पाया, बुल्मो विमोहन लीला में एक साल लगभग 8-10 दिन बाकी था वो समझ में आया, तो उनके मायानाट इतना तेज है, शंकर जी को नचा दिया। बोला त्रिभुवन में कौन ऐसे धीर व्यक्ति है जो तुम्हारा मायानाट में स्थिर रह सकते हैं, जिसको जैसे नचाएगा वो ऐसे नृत्य करेगा। तो अत्यंत रहस्य है साधनेर कथा, राधा कृष्ण लीला अति गुह्यतर, दास्यो वात्सल्य भावे नाहय गोचर। ये प्रेम महाप्रभु की इच्छा है, महाप्रभु या गोस्वामी लोग हमारा माधुर्य रस को स्थापना करना है, ये सर्व। इसलिए बताया राधा कृष्ण लीला जो अति गुह्यतर है, दास्यो वात्सल्य, दास्यो से दास्यो साक्ष्य वात्सल्य नाहय गोचर, केवल एक सखी गण यह अधिकार सखी होते हैं ये लीलार विस्तार, সখী বিনা এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়, সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদায়, সখী বিনা এই লীলার অন্যে নাহি গতি, সখী ভাবে যেই তারে করে অনুগতি। রাধা কৃষ্ণের কুঞ্জ সেবার সাধ্য সেই পায়, সেই সাধ্য পাইতে আর নাহি কো উপায়। তেহি এই নিরূপণ করে যে মাধুর্য রস হয় সখী ভাব হয়, ये सखी भाव सखी लोग के लीला विस्तार करते हैं, विस्तार करा के सखी लोग आस्वादन करते हैं, और सखी बिना लीला की पुष्टि नहीं होती है। लीला पुष्टि के लिए हजारों सौ करोड़ गोपी है, यही लीला विस्तार करते हैं, लीला रचाते हैं, लीला रचाते करते शुद्ध स्वयं सखी लोग की लीला आस्वादन करते हैं। तो इस सखी भाव जो अनुगति होगा, अनुगत जो होगा राधा कृष्ण कुंज सेवार साध्य, वो उसको ही वही पा सकते हैं, यही साध्य पाइते यार ना ही कोई उपाय, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसके रामानंद के द्वारा महाप्रभु इसकी स्थापना करने चाहते थे। इसी प्रकार एक दिन रामानंद जी राय जी चरण पकड़ के बताया प्रभु 10 दिन कम से कम इधर रहिए। तो इतनी प्रेमिक भक्त को देखकर महाप्रभु बताते 10 दिन का कथा, जाबोत अमी जीवो ताबो तो तुम्हारे संग छाड़ी देना पारी वो। बोला 10 दिन बोलते हो रामानंद, 10 दिन क्या बात है, जितना दिन मैं जीऊंगा तुम्हारा संगति मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, यही सबसे बड़ा दुख है। तो भक्त जो है प्रेमिक भक्त दूसरे भक्त की संगति नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं कभी, इसलिए बताया कि 10 दिन रहिए। 10 दिन क्या बात है, मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ, दोनों हम, मैं यहाँ से घूम के आ रहा हूँ, आप भी नकड़ी छोड़ के चलना, जगन्नाथ पुरी में दोनों हम लोग एकांत में रहकर इस कृष्ण कथा की रस को, इस अमृत धारा को पीते रहेंगे। तो मान लीजिए एक राजा है, राजा के नौकरी को छोड़ाकर, राजा के कार्यों को छोड़ाकर, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ही भक्ति की अंग है, भक्ति की कार्य है। तो भक्त की इस कथा साधन, राधा कृष्ण के गुणों को आस्वादन, इसके बाद शाम को आए तो महाप्रभु जी प्रश्न पूछा कि विद्या मध्य कौन विद्या गुणी। तो विद्या में से कौन सा विद्या है, राधा कृष्ण प्रेम जाए सही बड़ो ध्वनि, ये भूल गया, राधा कृष्ण मतलब कृष्ण के ज्ञान के बिना, भगवत भक्ति के बिना, राधा कृष्ण के ज्ञान बिना और कोई विद्या है ही नहीं। विद्या मध्य कौन विद्या सार, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। तो इसी प्रकार प्रश्न उन्होंने पूछने लगे, कीर्ति मध्य जीवर कौन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बोलिया जा रहा ख्याति, कहार स्मरण जीव करीबे अनुखान, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। हम लोग दिन रात इधर उधर के स्मरण करते हैं महा, ये जो प्रश्न है बहुत ही सार है, बहुत 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 ही सार है। तो बोला कहाँ किसका स्मरण जीव करेगा, अनुखन हमेशा, अनुखन का मतलब हमेशा, एक के बाद एक नहीं, एक पास कर दिया 9 बजे कर दिया बस छुट्टी, ऐसे नहीं, अनुखन कहाँ स्मरण जीव करी अनुखन, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण, भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही राधा कृष्ण भगवान के नाम गुण लीला को स्मरण करना है हमेशा। तो श्रवण मध्य कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन, सुनने के लिए क्या है, राधा कृष्ण के प्रेम के लिए जो है ये कान के लिए रसायन है, रसायन पीने से क्या है, वृद्ध व्यक्ति जवान हो जाते हैं, तो हमारा इस भक्ति जो है बुरा लगभग हो जाती है हमेशा। तो इसको जवान बनाने के लिए, ये करने के लिए कर्ण रसायन क्या है, राधा कृष्ण के प्रेम के लिए। मान लीजिए कोई बोलेगा ठीक है हमारा लक्ष्य तो ही है, अभी हमें स्टैंडर्ड नहीं है, तो दूसरे भागवत के दूसरे स्कंद से पहला स्कंद हम पढ़ सकते हैं, उसको धीरे धीरे अनुभव करके राधा कृष्ण प्रेम के लिए, लेकिन लक्ष्य जो है वही राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन, कान के लिए रसायन। इसी प्रकार सभी हमें रामानंद राय जी की दक्षिण भारत में इनकी वार्ता बड़े महान है, बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ के आ गए, नौकरी छोड़ के दोनों एक साथ में रहते थे, अंतिम समय चैतन्य महाप्रभु के दोनों ही रहे, सर्व दामोदर और रामानंद राय दोनों के गला पकड़ के, महापुरुष होते नहीं थे केवल स्मरण करते थे कृष्ण, इस लीलाओं को स्मरण, राधा कृष्ण के जो राधारानी भगवान श्री कृष्ण चले जाने के बाद जैसे राधारानी ब्रज में 100 साल रही और विलक्त रही, ललिता विशाखा को बोल बोल कर रो रो कर, इसी प्रकार महाप्रभु तो रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह वेदनाए प्रभु राखाय प्राण, रामानंद की कृष्ण कथा और स्वरूप की भजन। विरह वेदना से महाप्रभु दोनों ही रक्षा करते थे, एक तो कथा सुनाते थे, रामानंद राय जी भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते थे और स्वरूप दामोदर जी गीत सुनाते थे, भजन सुनाते थे, चंडीदास की, विद्यापति की और जयदेव इनको श्रवण कराते थे। विरह वेदना में महाप्रभु की रक्षा होते थे हमेशा। बताओ स्वरूप दामोदर, बताओ रामानंद, ऐसे बल्कि जैसे राधा रानी रोती थी ऐसे ही महाप्रभु रोते थे। कहा कहू कहा जाऊ कहा पाऊ ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक, कहा रे कहू के बोझे मोर दुख। तो इसी प्रकार महाप्रभु विलक्त थे, किसको बताओ, कौन समझ सकते हैं, ब्रजेंद्र नंदन मुझे नहीं मिल रहे हैं इसलिए मेरा साथी फट रहे हैं। इसी प्रकार हमेशा विलक्त थे। तो रामानंद राय और महाप्रभु के मेन पार्षदों में से 3.5 में से दो प्रधान जो है, एक्चुअली सिक्की माहिती और माधवी देवी की नाम तो गिनाया गया लेकिन ऐसे कोई भूमिका में दिखाई नहीं गया, लेकिन ये दो जो है ये प्रधान परिकर में से है। अंतिम समय की चैतन्य महाप्रभु की स्मरण में हमेशा रहते थे। स्वरूप दामोदर रात को सुला के चले जाते थे, फिर गोविंद जाके बोलते थे प्रभु प्रभु की आवाज़ नहीं आ रहा है, फिर और स्वरूप दामोदर सो नहीं पाते थे, फिर आ जाते थे, लंटन लेकर ढूंढते थे जगन्नाथपुरी में कहाँ गया। ऐसे लोग अंतिम समय में रहे। तो आज की जो दिन है पंचमी तिथि है, कृष्ण पंचमी तिथि, रामानंद राय जी की 13वीं तिथि है, क्योंकि इसी आगे रथ यात्रा आने वाले हैं, इसी तो महाप्रभु के विरह में स्मरण में इसी तिथि में रामानंद राय जी अपने दिव्य लीला में प्रवेश किया, क्योंकि महाप्रभु में कृष्ण भी है और राधा रानी भी है, इसलिए जो रामानंद राय जी है सुवल सखा भी है, अर्जुनिया गोपी भी है और विशाखा भी है, अर्जुन भी है। तो ये रामानंद राय की आज कथा समय पूरा हो चुका है, इधर विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इतना बोल के हम वाणी को विराम देते हैं। श्री जय श्री रामा राय रामानंद के पते पावन श्री गौर हरे के जगत श्री प्रभुपाद के संत गौर भक्तिविंद के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इनकी कथा लंबा, उन्हें तो 3-4 दिन लगता है, 4-5 4-4 घंटा होगा, तभी बहुत बड़ा डिटेल्स में हो सकता है, नहीं तो